खुदावन में आप सबकी सलामती हो। सब बहन भाइयों को ग्रेस बाइबल चर्च चारवाला में खुश आमदीद कहा जाता है। आज की इसी सुबह में उसका शुक्र हो कि उसने आज का दिन फिर हमारी जिंदगी में बख्श दिया कि हम उस रब्बुल अफवाज काबिल एहतराम और इज्जत और सताइश और प्रस्तश के लायक मनजी खुदावंद के हजूर झुकें और उसकी दी गई तमाम नेमतों बरकतों के लिए उसका शुक्र करें। आए हम खुदावंद के हजूर झुकें, इससे पहले के कलाम खुदा को सुनना शुरू करें, अपने अपने दिल की हालत का जायजा लेंगे, अपने आप को जांचेंगे। अगर किसी तरह की कोई रुकावट या हमारी रफाकत और शराकत में कोई भी ऐसा बंधन टूटा हुआ है तो खाकसारी की हालत में उसके हजूर झुकेंगे, क्योंकि पहला यूहन्ना पहला बाप उसकी नामी आयत के मुताबिक अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसी रुकावट गुनाह गलती कमी कमजोरी या फिक्र पाई जाती है या मजूसी पाई जाती है तो अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को माफ करने में सच्चा और आदल और सारी नाराजगी से पाक करने में रासबाज खुदा है। सोए खामोशी में खुदावंद के हुजूर झुक जाएंगे। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं तेरे बाजू के लिए जो हर वक्त हर पल खुदावंद खुदा बड़े हुए है। खुदावंद तेरे बड़े हुए बाजू के लिए, तेरे ताकतवर उस हाथ के लिए जो खुदावंद खुदा हर वक्त मौजूद है तेरे परों के लिए। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों को पनाह देता है, तू अपने लोगों की पनाहगाह है, तू हमारी सिर पर हमारी ढाल है। आज की सुबह में खुदा बाप जैसे तेरी हजूरी में आते हैं तेरे बेटे के नाम को जलाल देने के लिए, तेरे कलाम को और मसीह की अकल जो तूने हमें खुदा खुदा हर एक ईमानदार को दी है, उस अकल के मुताबिक रूहुल कुद्दस की मामूरी में आज जो कुछ भी सीखे हम सब के लिए भलाई और हमारी तरबियत और नसीहत का बायस बने। यीशु मसीह के नाम में सबको ले बड़ी बरकत दे। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जैसा कि दूसरा तिमोथियस 3:16-17 आयत में लिखा है, हर एक सहीफा जो खुदा के अलहाम से है, यानी कि हर एक सहीफा से मुराद बाइबल मुकद्दस जो 66 किताबों का मजमुआ है और इसमें हर वो एक सहीफा जो खुदा का अलहाम यानी के खुदा की सांस है, खुदा का बोला हुआ कलाम है, ईमानदारों के लिए किस लिए दिया गया। पालूस रसूल से कहता है, हर एक सहीफा जो खुदा के अलहाम से है वो किस लिए दिया गया, तरबियत तालीम और अल्जाम और सलाह और रासबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा यानी कि हर एक ईमानदार हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। सो खुदावन ने अपना कलाम बख्शा है ताकि उसकी रोशनी में, ताकि उसकी रहनुमाई में जब जब हम उसके मेयार के मुताबिक गलत पाए जाएं तो वो हमारी असलाह करता है, वो हमें तालीम देता है, हमें तरबियत देता है, और जब हम गलत रास्तों पर जाते हैं तो कलाम खुदा हमें मुल्जम या अल्जाम हम पर लगाता है कि हम अपनी कुव्वत से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम खुदा को अपनी जिंदगी में पीछे कर रहे हैं। सो जैसा कि हम कलाम खुदा में से सीख रहे हैं, लूका 19:5 उसकी 11वीं आयत में से जो तमसील जिसके बारे में हम सीख रहे हैं और जिस पर सीखेंगे गहरे तौर पर, जरूरी है कि इससे पहले के इस तमसील में जाएं पिछले हिस्से को जानने की जरूरत है कि लूका की अंजील में क्या बात चल रही है। सो मेरे साथ आज निकालें इस सिलसिला को जारी रखते हुए, फिर आज हम देखेंगे इन्हीं बातों को जैसा कि 11वीं आयत में लिखा है, जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही, यहां पर रुकेंगे, जब वो इन बातों को सुन रहे थे, कौन सुन रहे थे? शागिर्द और वो भीड़ और वो तमाम लोग जिसका हमने पिछले दिनों में मतालिया किया, ये वो तमाम लोग हैं जिसमें हमने पहली दो तमासील को देखा, एक बेवा की तमसील को देखा जिसमें ईमानदारों की जिंदगी बयान की गई है कि किस तरह उन्हें मुसलसल तौर पर खुदावन को पुकारने की जरूरत है क्योंकि वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। फिर दूसरी हमने दो अशकास के बारे में देखी जिसमें एक फरीसी है और दूसरा मसूल लेने वाला, और फिर हमने तीसरा हिस्सा जो देखा वो एक सरदार है जो बड़ा दौलतमंद है। सो हमने इस बात को देखा, फिर अंधे भिखारी को देखा जिसने भीख मांगी और खुदावन खुदा ने उस पर रहम किया, उसे क्या दी? शिफा दी, उसके अंधेपन को दूर किया। सो आज हम मुसलसल तौर पर 19वां बाप उसकी पहली 10 आयात में से चंद एक सच्चाइयां अपनी तरबियत के लिए सीखेंगे, और ये जरूरी है इससे पहले कि हम 11वीं आयत से 27वीं आयत की तमसील को समझे, हमें पिछला हिस्सा अच्छे तरीके से जानने की जरूरत है, और खुदा की खिदमत करते हुए एक खादम की हैसियत से मेरा ये हक बनता है कि आपको मकूल मालूमात दी जाए ताकि आपको पता हो कि आप क्या सीख रहे हैं, और ये जरूरी है ताकि हमारी तरबियत और नसीहत हो, ताकि हमारी असलाह हो, और देखें कि बाइबल मुकद्दस हमारी रहनुमाई के लिए क्या कहती है। सो जैसा कि हम पहली 10 आयात में 19वें बाप में देखते हैं, यहां पर यूं लिखा है, वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकई नाम एक मादनी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यसु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, यानी वो उसी राह से जाने को था। यहां पर हम देखते हैं इन पहली 10 आयात में जो हम मफहूम देखते हैं, इसका मफहूम इन पहली 10 आयात का क्या है? इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। यहां पर हम यहू के रास्तों में जब यसुमसी दाखिल हो रहा है, वहां पर एक आदमी जकई नाम आदमी को देखते हैं जिसका हमने सीखा, जिसका मतलब है दयानदार, नेक, ये उसके नाम का मतलब है। लेकिन उसके पेशे से, उसके काम से जब देखते हैं इस यहूदी को जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद है, उसका पेशा क्या था? वो रूमी हुकूमत के लिए क्या लेता था? मसूल लेता था, और वो बहुत दफा अपने लोगों से जो कि उसके अपने लोग थे, यहूदी थे, उनसे वो दुगना बनाता था और बेईमानी भी करता था, ये उसका पेशा था। आगे चलकर हम इसे देखेंगे। उसके दिल में ख्वाहिश क्या है? जब हम तीसरी आयत को देखते हैं, वो यसु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है। उसने यसु के बारे में सुना था कि वो अंधों को आंखें देता है, वो लंगड़ों को चलाता है, वो कोड़ियों को शिफा देता है, वो गुमराह लोगों को राह दिखाता है, वो ना अमीदों को अमीद देता है, वो हर तरह के बीमारों को क्या करता है? शिफा देता है, और वो खासकर उन लोगों को मोहब्बत करता है जो उस वक्त के माशरे में फकीयों और फरीसियों के बुगज और हसद और उनके मेयार के मुताबिक उनकी नजर में ठीक नहीं उतरते थे, जो उनकी मुखालफत का क्या था? सामना करते थे। वो यसु को देखने की ख्वाहिश रखता था कि कौन सा है। उसने यसु के बारे में सुना हुआ था, लेकिन वो शख्सी तौर पर नहीं जानता था कि वो कौन है। और यहां पर हम देखते हैं तीसरी आयत के, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था इसलिए कि उसका कद छोटा था। यहां पर हम اس سردار کو دیکھتے ہیں جو دولت مند ہے، جو اپنے معیار سے اپنے آپ میں عزت رکھتا ہے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی دولت کے باعث، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے کی ماند عمل کرتا ہوا، بچے کی ماند یہاں پر اس کا رویہ نظر آتا ہے، اور یہ کس لیے؟ کہ اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا ہے، وہ یسوع مسیح کے بارے میں جانتا تھا کہ اس نے کیا 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 ہے، لیکن شخصی طور پر کبھی بھی اس کی ملاقات یسوع سے نہیں ہوئی. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع کی محبت میں اور اس سے ملاقات کی اتنی خواہش اور مشتاق ہے کہ وہ کوشش، اس کی کوشش کیا ہے کہ اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی راستے، یسوع اسی راستے سے جانے کو تھا. جب ہم یہاں پر زکی کی زندگی میں بچے پن کو دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پر ایک سچائی کو پاتے ہیں کہ نجات حاصل کرنے کے لیے، زندگی میں، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے بچے کی ماند بننا ضرور ہے. اور کیوں یسوع مسیح نے لوکا 18 باب اس کی 17 آیت میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کی محبت کو، اس کی خواہش کو کہ وہ کیا چاہتا ہے، مسیح کو شخصی طور پر جاننا چاہتا ہے. بے شک اس نے سنا ہوا ہے کہ وہ کتنا رحم دل ہے، وہ کتنے معجزات کرتا ہے، وہ بھوکوں کو سیر کرتا ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایک شخصی خواہش ہے، اس کی کوشش ہے کہ اسے دیکھے کہ وہ کون سا ہے، جس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ شخصی طور پر اس سے ملنا چاہتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں پہلے سردار کو جو شریعت کا صاحب سے ان تمام حکموں پر عمل کرتا آیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خاک سار نہیں کیا، اس نے بچے کی ماند یسوع مسیح کی بات پر یقین نہیں کیا. جب یسوع نے کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اس نے ایسا نہیں کیا اور یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اور وہ اداس اور مایوس ہو کر چلا گیا. اور اسی طرح دو شخص کو دیکھتے ہیں جو اسی باب میں 9 آیت سے 14 آیت میں دیکھتے ہیں، فریسی اور مسول لینے والا. مسول لینے والے نے اپنے آپ کو خاک سار کر دیا اور اس بات کا اقرار کیا کہ میں گناہ گار ہوں، اور یسوع مسیح نے کہا کہ وہ جب اپنے گھر کو لوٹا تو راست باز ٹھہر کر لوٹا، بجائے اس فریسی کے جس نے کہا کہ میں سب کچھ کرتا ہوں. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں زکی نام آدمی بچے کی طرح عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ ہے وہ کی، یہ ہے وہ راز ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے کا، کہ خدا کے فضل پر بھروسہ کرنا. اور یہاں پر زکی بچے کی مانند عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے پہلی 4 آیات میں. اور جب ہم 5 آیت کو دیکھتے ہیں، سو پہلی بات کیا ہے، زکی نام آدمی یہاں پر بچے کی طرح عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس خدا کی بادشاہی کو جو زمین پر بدنی حالت میں موجود ہے اس کو دیکھنے کا مشتاق ہے، اس کو جاننے کی خواہش رکھتا ہے. زکی اپنی دل کی گہرائی میں جانتا تھا، اس نے سنا ہوا تھا کہ وہ کس طرح گناہگاروں سے محبت کرتا ہے، حالانکہ اس نے سنا ہوا تھا کہ وہ کس طرح کوڑی لوگوں کو چھوتا ہے اور شفا دیتا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ اس وقت کے یروشلم کے وہ فریسی اور فقی اور ربی جو کہ کوڑیوں کو اپنے پاس بھی کھڑا ہونے نہیں دیتے تھے کیونکہ ڈرتے تھے کہ کوڑ ان کو نہ لگ جائے، یسوع مسیح کی وہ محبت اور ترس کو جانتا تھا. اور زکی آج بہت سی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرح، زکی وہ گناہگار اور کھوئی ہوئی بھیڑ ہے، जिसे खुदावंद यीशु मसीह तलाश करेगा, जिसे खुदावंद यीशु मसीह मिल जाएगा। और यहां पर हम देखते हैं कि जकई यीशु को देखने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन गहरे तौर पर जब देखा जाता है तो यीशु मसीह उसे ढूंढने के लिए जमीन पर आया हुआ है। यीशु मसीह उसी रास्ते पर जाने को था, यहां पर उसकी मुलाकात जकई से होगी, क्योंकि यीशु मसीह कुल इलम रखता है। यीशु मसीह खोए हुओं की तलाश करता है। यीशु मसीह जकई को जानता था इससे पहले कि वो इस दुनिया में कोई सांस ले। आप में से हर एक को वो जानता है, क्योंकि हमारी कोई भी बात उससे छुपी नहीं। यीशु मसीह हम सब की हालत को जानता है, जिस तरह यहां पर ये जकई जो खोई हुई भेड़ है, जो परगंदा भेड़ है, जो अपने चरवाहे को नहीं जानती, यीशु मसीह उसे जानता है और वो यीशु की आवाज को पहचानेगा। और यहां पर हम देखते हैं कि चरवाहे की आवाज को, यानी कि उसके दावतनामा को जकई कबूल करता है पहली चार आयात में। और हम पांचवीं आयत में देखते हैं, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐज कई जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। इससे पहले के पांचवीं आयत को देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि जकई वो भेड़ है जो खोई हुई है, जिसे खुदावन खुदा जानता है और जिसके बारे में खुदावन का कलाम हमें जबूर नवीस में ये बात बताता है, जहां पर दाऊद नबी जबूर 139 में हमें सिखाता है कि खुदावंद यीशु मसीह कुल इलम रखता है। वो हमारी सब राहों से वाकिफ है, वो हमारे सब ख्यालों को जानता है, वो हमारी जिंदगी की छानबीन करता है, वो हमारी सब रफ्शों से वाकिफ है और उससे कोई भी बात, हमारी जिंदगी की कोई भी बात छुपी नहीं। और पंद्रहवीं आयत में दाऊद नबी कहता है जबूर 139, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के इस्तफार में अजीब तौर पर मरकब हो रहा था, तो मेरा कालब तुझसे छुपा ना था। वो यहोवा यीशु से बात करते हुए कहता है कि तू मुझे पहले से ही जानता था। और सोलहवीं आयत में कहता है, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादा को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्र थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। यीशु मसीह कुल इलम रखता है, वो इल्मुल मुतलिक है, वो तमाम इलम रखता है, वो इब्तदा से आखिर तक है और उसका आखिर कभी भी नहीं है। सो यहां पर हम देखते हैं जकई को। और दूसरी बात यहां पर चाहता हूं कि सीखें, पांचवीं और छठी आयत में जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ जकई जल्द उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर रहना जरूर है। और यहां पर जकई की खुशी की हद हम देखते हैं और उसने क्या किया, मनजी खुदा को अपने घर लेके जाता है। सो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसे कहा, जब उस पर निगाह की, खुदावंद यीशु मसीह बनीनु इंसान के दिलों पर नजर करता है, वो हमारी रूहों को जांचता है और खुदावंद यीशु मसीह उससे वाकिफ था। यहां पर जकई जो के छोटे कद का है, भीड़ का सामना कर रहा है और अपने आप में वो जानता है कि कितना गुनाहगार है और दुनिया के लोगों से उस सारी मलामत को सुना हुआ है, वो अपने आप को जानता है और उसने अपने आप को खाकसार किया। और यीशु मसीह दिलों पर नजर करता है। पांचवीं और छठी आयत में जब यीशु मसीह ने जकई पर नजर की, खुदावंद यीशु मसीह जैसा कि बताया कुल इलम रखता है, वो सब कुछ जानता है, वो आपके बारे में एक एक बात जानता है। यीशु मसीह कद, कुवत या काबिलियत या किसी और सलाहियत को बनीन इंसान में नहीं देखता कि उस पर उसका चुनाव करे या अपनी तवज्जो उस पर डाले। वो देखता है تو صرف اور صرف دل کو کہ اس کے دل میں اس کے لیے کیا محبت ہے. اور جیسا ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا, ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھیں, پہلا سیمول اس کا 16 باب. یہاں پر داؤد نبی کے باقی بھائی ہیں, یہاں پر سیمول نبی, یہاں پر دیکھتے ہیں جب خداون کی بات اس سے ہو رہی ہے تو خداون نے کہا سیمول سے, کہا تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ, اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا. یسوع مسیح قابلیت کے زور پر نہیں بلکہ دستیابی کو دیکھتا ہے, دل پر نظر کرتا ہے. اور جیسے فریسی نے اپنی قابلیت ظاہر کی, میں روزہ رکھتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں, میں دھا یقی کرتا ہوں, میں انصاف کرتا ہوں, میں زناکار نہیں, میں وصول لینے والے کی مار نہیں, اس نے اپنی قابلیت کا لسٹ فرشت یسوع مسیح کے آگے رکھی, لیکن یسوع مسیح نے اسے ناپسند کیا, کیونکہ یسوع مسیح کو پسند آنے کے لیے دلی محبت کی ضرورت ہے, جو یہاں پر زکی کی زندگی میں نظر آتی ہے. اور سیمول پہلا سیمول 16 باب, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں داؤد نبی کی زندگی میں کہ خداوند نے کہا کہ انسان چہرے پر ظاہری صورت پر نگاہ کرتا ہے, لیکن میں دلوں پر نظر کرتا ہوں کہ ان کے دل کی خواہش کیا ہے. سو یہاں پر زکی کی زندگی میں جب یسوع مسیح نے نگاہ کی تو یسوع مسیح نے اسے اس کی گہرائی میں دیکھا کہ اس کے دل میں کیا خواہش ہے, وہ کس طرح ستایا ہوا ہے, نا امید ہے, کس طرح ٹوٹا ہوا ہے, بے شمار دولت ہونے کے باعث, سردار ہونے کے باعث, معاشرے میں اچھا کھانے پینے کے باعث, لیکن وہ اندرونی طور پر خالی ہے, نا امید ہے, حقیقی اطمینان سے خالی ہے. اور یسوع مسیح نے اس کے دل کی گہرائی پر نظر کی اور اسے پسند کیا. سو یسوع مسیح انسانی قابلیت کو نہیں دیکھتا, یسوع مسیح صرف اور صرف دستیابی کو دیکھتا ہے. اس مشکل میں, اس سوچ میں, آج سے کئی سال پہلے میں نے بہت مشکل کا سامنا کیا جب میں اپنی زندگی کو دیکھتا تھا کہ اچھی تعلیم نہیں ہے, میرے گھرانے کا جو کہ سلسلہ یا چال چلن درست نہیں ہے خدا کی نظر میں, دنیا کی نظر میں کون یقین کرے گا. تو میں نے خدا کے کلام میں سے یہ حوصلہ پایا. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں کہ جیسے آپ کو کہا خدا قابلیت اور خدا کسی اور چیز کو نہیں دیکھتا, صرف اور صرف دستیابی کو دیکھتا ہے, صرف اور صرف خاکساری کو دیکھتا ہے. اور یہاں پر زکی نے اپنے آپ کو خاکسار کیا, یہاں پر زکی خداوند کی حضوری میں دستیاب ہوا, خدا اس کے دل کی گہرائی کو جانتا تھا. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت سال اس بات میں پریشانی, مزمائش اور امتحان, اور یہاں تک سوچا کہ خدمت کو چھوڑ کر اپنی پرانی زندگی گزارنا اچھا ہے, یہاں تک سوچا جب بہت سی ملامت اور ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کا سامنا کیا تو یہ سوچا کہ خدمت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, چھوڑ کر بہتر ہے پرانی زندگی گزاری جائے, اس ملامت اور دکھ بھری زندگی کو چھوڑا جائے, کیونکہ اپنی زندگی میں جو جھوٹ ابلیس سے جو فریب وہ دینا چاہتا تھا کہ تو خدا کی نظر میں قابل نہیں ہے. لیکن جب روح القدس کی رہنمائی میں اس مکاشفہ کو پایا تو خدا سے اور زیادہ محبت کرنے کی خواہش پیدا ہوئی. سو پہلا کرنتھیوں اس کا 2 اس کی 26 آیت کو میرے ساتھ دیکھیں. یہاں پر ایمانداروں سے پالوس رسول بات کرتے ہوئے کہتا ہے اے بھائیو, جب بھی اے بھائیوں کا لفظ آپ نئے نامہ میں دیکھتے ہیں ایمانداروں کو بلایا جاتا ہے, ایمانداروں کی توجہ حاصل کروائی جاتی ہے. اے بھائیو, اپنے بلائے جانے پہ تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم, بہت سے اختیار والے, بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے, بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کریں, اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بیوقوفوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیز کریں، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ خداوند خدا وہ ہستی ہے جو فخر کرتی ہے، کیونکہ وہی فخر کے قابل ہے۔ انسان میں کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ اپنے آپ پر فخر کرے۔ جب میں نے یہ کلام کو اپنی زندگی میں پایا اور کہا کہ خدا میری زندگی میں قابلیت نہیں بلکہ دستیابی کو دیکھتا ہے، تو اس دن سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ ہمارے دلوں پر نظر کرتا ہے، اور یہ ہماری کسی قابلیت پر نہیں بلکہ خدا سے محبت کے باعث ہے کہ وہ ہر ایک کو ناچیز کو چنتا ہے تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ اور ایک اور حوالہ مجھے یاد ہے جداؤن کی زندگی میں سے، کہ اس نے کہا میں منسی کے گھرانے میں سب سے چھوٹا ہوں، میں کیسے بنی اسرائیل قوم کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں؟ تو خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر، جو خدا کا فرشتہ، یہ ریفرنس یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو اپنے اسی زور میں جا، یعنی کہ اپنی کمزوری کی حالت میں جا، میں تجھے استعمال کروں گا۔ سو خداوند یسوع مسیح دلوں پر نظر کرتا ہے، اور یہ ہے پانچویں اور چھٹی آیت۔ اگر آپ آج نا امید ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، یا شکستہ دل ہیں دنیا کی باعث، یا اپنے مخالف کے باعث جو جلتے ہوئے تیر ہیں، کہ آپ خدا کی نظر میں اچھے نہیں، تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کے دل پر نظر کرتا ہے کہ وہ دل کتنا اس کے لیے سرگرم ہے، وہ دل کتنا اس منجی سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ اگر دنیا کا علم آپ کے پاس ہو تو 100% بات ہے کہ آپ منجی خدا کو نہیں بلکہ دنیا کی باتوں میں مگن رہیں گے، کیونکہ دنیا کی چیزیں صرف اور صرف عارضی ہیں، اور اس میں کوئی بھی خوش کرنے والی بات نہیں پائی جاتی۔ سو خداوند دلوں پر نظر کرتا ہے، اور صرف دستیابی، یعنی کہ موجودگی پر۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں موجود ہوں، اور ایسے ٹوٹے ہوئے برتنوں کو، نامید لوگوں کو وہ لیتا ہے اور اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ یہ حوصلہ فضائی آج سے 7 سال پہلے جب اپنی زندگی میں میں نے پائی، تو میں نے اپنی کمزوریوں کو چھوڑ کر خدا کی قدرت پر دھیان کرنا شروع کیا، اور آج اس نے اپنی اس قدرت کے باعث یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس میں میرا کوئی زور یا فخر نہیں، صرف اور صرف یہ ہے تو صرف خدا کے فضل سے، اور وہ آپ کے لیے بھی اس سے بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو خاکسار بنا کر، دل کو صاف کر کے اس سے سچی محبت کرتے ہیں۔ سو تیسری بات اس حوالہ میں سے چاہتا ہوں کہ آپ پائیں، سیکھیں، ساتویں آیت کو دیکھیں۔ یہاں پر جب دیکھتے ہیں یسوع مسیح کس کے ساتھ جا رہا ہے، زکائی کے ساتھ اس کے گھر جا رہا ہے۔ ساتویں آیت میں لکھا ہے، جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے، وہ تو ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں گناہگار شخص کے ہاں جا اترا، اور زکائی اور ہر ایک بنی نو انسان جو فطرتی گناہ میں پیدا ہوا ہے، جسے ماروسی گناہ کہتے ہیں، یہ وہ گناہ ہے جو ہمیں خدا کی نظر میں اس کے سامنے گناہگار ٹھہراتا ہے۔ اور یہاں پر اس لوگوں کے بڑے مجمع میں فقی، فریسی اور اس وقت کے تمام لوگ جو اپنی راست بازی پر بھروسہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کی شریعت پر پورے طور پر عمل کرتے ہیں، جو عمل نہیں کرتا وہ گناہگار ان کو گنتے ہیں، اور خاص کر یہاں پر زکائی کو وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ غیر قوم یعنی رومیوں کے لیے کیا کرتا ہے، کام کرتا ہے اور مسئول اکٹھا کرتا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں کہ یہ گناہگار ہے۔ لیکن یسوع مسیح خداوند خدا گم شدہ اور کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ صحت مند بھیڑوں کے پاس، یا دولت مند بھیڑوں کے پاس، یا अकलमंद भेड़ों के पास नहीं जाता बल्कि उनके पास जाता है जो खोई हुई हैं, जो बीमार हैं, जिनके जख्मों को भानने की जरूरत है, जिन शिकस्ता दिलों को तसल्ली देने की जरूरत है। और यीशु मसीह, तीसरी बात चाहता हूं इस हवाला में से, खुदावंद यीशु मसीह गुमशुदा और खोई हुई भेड़ों की तलाश के लिए आया है। और यहां पर हम जब देखते हैं लोग बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये तो गुनाहगार शख्स है, और यीशु मसीह उसके साथ क्या रखता है, रफाकत रखता है, उस पर बुड़बुड़ाते हैं। इन तमाम मजहबी उस वक्त के शरीयत के मानने वाले लोगों के मजमा में वो लोग अपने आप को पाक और अफजल समझते हैं, और उन्होंने अपनी जिंदगी में ये बात महसूस की कि क्यों यीशु मसीह ने हमें दर्जा नहीं दिया, क्यों यीशु मसीह ने हमें नहीं बुलाया। और इसके लिए मेरे साथ ये तमसील देखें, लूका की इंजील उसका 15वां बाप उसकी पहली आय से, क्योंकि यीशु मसीह की मोहब्बत उन खोए हुए और गुमशुदा लोगों के लिए जो मुआशरे में रद्द किए हुए हैं अपनी तालीम के मायार के मुताबिक, जो शरीयत पर उस वक्त पूरा नहीं उतर पाए, जिन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम अपने आप से तेरी नजर में रास्तबाज नहीं सह सकते, हम गुमराह हैं, हम कोड़ी हैं, हम इस लायक नहीं। सो यहां पर हम देखते हैं 15वीं आयत में, सब मसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास यानी के यीशु मसीह के पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने यानी के उसका कलाम सुने। और फरीसी और फकी बुड़बुड़ा कर कहने लगे ये आदमी गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाता है। जैसा कि तीसरा पॉइंट आपको बताया है, खुदावन गुमशुदा और खोई हुई भेड़ों की तलाश के लिए आया। और तीसरी आयत में यीशु मसीह उनसे ये तमसील कहता है जब वो उस पर बुड़बुड़ा रहे हैं कि वो गुनाहगारों, नकम्मों, हकीरों और हर तरह के बेसहारा लोगों के साथ जिनको हौसले की जरूरत है मिलता है, उनसे बात कलाम करता है। तो यीशु मसीह ने एक तमसील कही जिससे आप वाकिफ हैं, मैं तुमको, तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। जब मिल जाती है तो बहुत खुश होता है और उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूं इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होती है। सो यीशु मसीह ने उन बुड़बुड़ाने वाले लोगों को कहा कि तुम नहीं समझते, तुम अपनी जमीनी जिंदगी और जिस्मानी जिंदगी के लिहाज से अगर तुम्हारे पास भेड़े हो तो अगर एक खो जाए तो तुम भागकर उसे ढूंढते हो जब तक मिल ना जाए। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदावन जो चरवाहा गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए आया हूं, मैं उस खोई हुई भेड़ के पीछे जाऊंगा क्योंकि जब वो मिल जाती है, जैसे जकई ने इकरार किया, जब वो खोई हुई भेड़ यीशु मसीह के पास आई है, जिसे आगे चलकर हम नामी आयत में देखेंगे कि किस तरह आसमान पर खुशी हुई। सो यहां पर हम देखते हैं कि लोग बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो गुनाहगारों के साथ खाता पीता है, और ये है यीशु मसीह की मोहब्बत गुमशुदा लोगों के लिए। और वो सिर्फ और सिर्फ दिलों पर नजर काता है क्योंकि वो कहता है तंदुरुस्त को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमार को, टूटे हुओं को, खोए हुओं को, ना उम्मीदों को। आज हो सकता है कि आप भी अपनी मसीही जिंदगी में इस तरह का दुख का सामना कर रहे हो अपने मुआशरे से, अपने मसीही ईमानदारों भाइयों से, कि आप इस काबिल नहीं कि मसीह की मोहब्बत का इजहार करें, या मसीह आपकी जिंदगी में है या नहीं, या आपके पास कोई ऐसी काबिलियत या ऐसा नमूना या ऐसा सबूत नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह आप में से हर सबसे, हर एक से मोहब्बत करता है, वो आपके दिल पर नजर करता है क्योंकि वो चरवाहा है, खोए हुओं को ढूंढता है। सो आठवीं आयत में देखते हैं, और ज़काई ने खड़ा होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं और अगर किसी का कुछ ना हक लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। यसु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है इसलिए कि ये इब्राहिम का बेटा है। यहां पर उसका बयान देखते हैं कि उसने अपनी जिंदगी में इस बात को कबूल किया और वो निजात उसके घर में आई और वो निजात का वारस बना। वो जो छोटे कद का आदमी था वो मसीह की नजर में क्या किया गया, बड़ा किया गया, यानी कि मसीह की रास्तबाजी उसे मिली। वो जो क्या था, खोया हुआ था, वो सही रास्ते पर आया। उसकी तलाश की, उसकी गुमशुदगी की हालत में खुदावन ने उसे तलाश किया। और दसवीं आयत, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। चौथी बात ये आपको चाहता हूं कि आज आप सीखें, यसु मसीह जो रहम दिल और खोई हुई भेड़ों को मोहब्बत करता है, उनसे तरस और प्यार की निगाह से देखता है, वो उन तमाम परगंदा और उन भेड़ों को जो चोट खाई हुई हैं उनकी तलाश करता है। और वक्त की कमी के बायस हम इस चौथे पॉइंट को सीखेंगे और फिर 11वीं आयत से 27वीं आयत तक हम इस तमसील पर सीखेंगे। सो अगले हिस्सा में हम देखेंगे चौथे पॉइंट को, 10वीं आयत पर सीखेंगे, इब्ने आदम यानी के यसु मसीह वो चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की तलाश के लिए आता है, खोए हुओं को यानी के वो भेड़ें जो खोई हुई हैं किस लिए, निजात देने के लिए आया है। सो आज खुदावन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि वो हमारी काबिलियत को, वो हमारी सलाहियत को, वो हमारी जिंदगी में किसी डिग्री को नहीं देखता कि कितनी ज्यादा डिग्रियां या कितने नाम या लेटर या स्पेलिंग हमारे नाम के आखिर पर लिखे जाते हैं कि हमने ये हासिल किया है। वो हर एक टूटे हुए बर्तन को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। इसका हर भी मतलब ये नहीं कि हमें तालीम हासिल करने की जरूरत नहीं, हमें दुनिया के इस निजाम में कोई भी ऐसी जबान सीखने की जरूरत नहीं, ये जरूरी है। लेकिन यहां पर बात हो रही है जब हम अपने इलम, अपनी दौलत या अपनी सलाहियत को अहमियत देते हैं तो वो हमारी जिंदगी में रुकावट का बायस बनती है। और जब हम अपनी किसी चीज पर भरोसा करते हैं जो हमने अपनी कुव्वत और ताकत से कमाई हो, जो खुदा ने दी है, कलाम कहता है कि अगर जो कुछ भी आपने किया है, खा वो स्कूल की कोई डिग्री है, कोई यूनानी इब्रानी को सीखने का कोर्स है, या फिर आप कारोबार में कामयाब हैं, या आप तालीम में, या अपने घर में, या माशरे में किसी हिस्से में या पेशे में कामयाब हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल के बायस है क्योंकि उसने आपको कुव्वत दी है। खरूज की किताब इसे बड़े वाज़ह तौर पर कहती है कि अगर आपने कुछ कामयाबी हासिल की है तो ये खुदा की तरफ से है। अगर आप आज दुनिया के किसी मैयार पर हैं, किसी ऊंचे दर्जा पर हैं, तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल के बायस है। अगर हम इस काबिलियत को, कामयाबी को, सलाहियत को अपनी जिंदगी में ठोकर का पत्थर बनाते हैं तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है, क्योंकि अगर हम इस पर भरोसा करते हैं तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं दुनिया के हकीरों, नाचीजों, बेवजूदों को मैंने इसलिए चुना ताकि कोई ये फख्र ना करे कि उसने अपनी कुव्वत से कुछ किया। उसने सब कुछ जो हमें दिया है अपने फजल से दिया है। और यहां पर ज़कई ने इस बात को अपनी जिंदगी में जाना और वो जो सिर्फ उसके बारे में जानता था, उसके बारे में सुना था, उससे शख्सी तौर पर मुलाकात हुई। आज आप में से भी हर एक के लिए ये दावतनामा है, अगर आपने पहले कभी भी यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो ये बख्शिश है, ये तोहफा है, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर आपके तमाम गुनाहों की कीमत अदा की है और उसने इंसान के लिए अबदी जिंदगी खरीदी है। उसने गुनाह की मंडी में से खरीद लिया ताकि ये तोहफा, ये बख्शिश ईमान के जरिया से हासिल करें। और बाइबल मुकद्दस इमाल 16 बाब 30-31 आयत में कहती है, जब उस वक्त फिलिपी दरोगा ने पालूस और सिलास से ये सवाल पूछा कि साहिबो कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, तो उन्होंने से जवाब में कहा, खुदावंद यस्सु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। अगर आपने पहले ये कभी फैसला नहीं किया तो सिर्फ अपनी शख्सी हालत में ये कहने की जरूरत है कि खुदा बाप, मैं तेरे बेटे को अपना निजात दहिंदा कबूल करती हूं, करता हूं, तो आप उसके घराने के लोग हैं। और उसने कहा कि जितनों ने मुझे यानी मेरे बेटे को कबूल किया, मैंने उसे खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आए हम खुदावंद के हुजूर झुकें और चंद लम्हों के लिए खामोशी में इस फैसले को देखेंगे। अगर कभी पहले यह फैसला नहीं किया तो आज करने की जरूरत है। खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं जितनों ने भी खुदावन खुदा तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल किया। तू दिलों को जांचता है, तू दिलों पर नजर करता है उनकी बहाली के लिए और खुदावन खुदा उन सब के लिए कि खुदावंद के आसमान पर बड़ी खुशी है और उन सब के लिए खुदावंद की हमेशा की जिंदगी अब तक उनके लिए महफूज है। और जिन्होंने तुझे कबूल किया तूने उनके लिए ये ऐलान किया कि वो मेरे बेटे और बेटियां और रासबाजी के क्या हैं, हकदार हैं। सो खुदा बाप, आज के कलाम को ले और जैसे कि तेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता, हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरा और हमें हर रोज अपनी नाउम्मीदी में अब्लीस के जलते हुए उस सारे तीरों, मलामत और झूठों और फरेबों के बायस जो खुदावन खुदा चाहता है कि हम तेरी मर्जी को पूरा ना करें, उनको खुदावन खुदा समझने का इम्तियाज दे ताकि तेरी आवाज को पहचाने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।